Look around yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun.
मेरे पीछे हम यहाँ जॉर्डन में अजलान को देख रहे हैं। वह शहर वहाँ दूर में है। यह जॉर्डन की तरफ है। चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ सीधे देखें जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ। यह लेबनान की ओर है। शायद वह पहाड़ जो आप नहीं देख सकते, मैं थोड़ा देख सकता हूँ। शायद वह लेबनान की सीमा पर है। और फिर हम यहाँ थोड़ा और घूमेंगे। ये वह जगह है जहाँ दमिश्क है, ये सीरिया है जहाँ समस्याएं हैं। हम आशा करते हैं कि वे जल्दी समाधान करें, लेकिन सीरिया यहाँ है। लेकिन हम अभी नहीं रुके। आपको क्या लगता है कि इस पहाड़ के दूसरी तरफ क्या है, क्या आप जानते हैं? खैर, मेरे पास आपके लिए एक आश्चर्य है, क्योंकि उस पहाड़ के दूसरी तरफ फिलिस्तीन है। हम इसे फिलिस्तीन कहते हैं, लेकिन यह पवित्र यहीं यरूशलेम है, और यहीं सलादीन अल अय्यूबी गए थे क्रूसेड के मामले को सुलझाने के लिए लगभग 800 साल पहले। क्या आपको पता है कि हम जिस स्थान पर खड़े हैं, वहीं से उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई और सब कुछ एकत्र किया था, क्योंकि यही वह जगह थी जहां से उन्हें इन सभी क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों को समझने का अवसर मिला। यहां से वे फिलिस्तीन या पलास्तीन में प्रवेश कर सके और मुद्दों को हल किया, समस्याओं को एक मानवीय और न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाया। जब चारों ओर खून बह रहा था, तब वे ऐसे तरीकों पर काम कर रहे थे जिससे खून खराबा रुक सके, और ऐसा ही हुआ। हम अब जॉर्डन के प्रभाव में हैं। हमने यहाँ एजुलॉन में आवास वापस पा लिया है, और अब हम अपने विषय पर आ सकते हैं। हम आज इस पर बात करना चाहते हैं। हम उन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो हम सभी को प्रभावित करते हैं। वे जो मध्य पूर्व कहते हैं, वहां क्या चल रहा है, अरब देशों में क्या हो रहा है और पूर्वी देशों में क्या हो रहा है, उदाहरण के लिए तुर्की, सीरिया, लेबनान में क्या चल रहा है, मिस्र में क्या हो रहा है, और यहाँ जॉर्डन में भी कुछ बातें क्या हैं, और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। पहला, और यही इस्लाम ने हर मुसलमान को सिखाया है, पहले जब आप दूसरों को सुधारने जाएं, पहले खुद को सुधारें। कुरान में अल्लाह हमें बताता है कि वह सब कुछ नियंत्रित करता है। वह कहता है, मैंने तुम्हें और तुम्हारे कार्यों को बनाया। और इसका मतलब है कि हमारी सभी परिस्थितियां वास्तव में भगवान की इच्छा का परिणाम है। और वह कहता है, मैं आपकी परिस्थितियों को तब तक नहीं बदलूंगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। अगर हमें बदलाव चाहिए, तो हमें अपने भीतर बदलाव की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सुधारते हैं तो अल्लाह हमारी स्थितियों को सुधारता है। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने चरित्र, अपने व्यवहार पर, तो अल्लाह उन आशीर्वादों को लाएगा जो अच्छे व्यवहार के साथ आते हैं। इस्लाम में सहिष्णुता का कई उल्लेख है। यह सह अस्तित्व है, क्योंकि हमेशा ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आप सहन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको सहन करना है, इसके खिलाफ कुछ करना नहीं है। आप चीजों के साथ सह अस्तित्व कर सकते हैं, और साथ ही यह समझ सकते हैं कि कुछ चीजें गलत है, लेकिन आपको यहां सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनके साथ क्या गलत है, जब तक हम अपने अंदर की चीजों को सुधार नहीं लेते। और आप देखेंगे कि अल्लाह आपको एक बेहतर इंसान कैसे बनाएगा, और आपके आसपास के लोग बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। ये मुख्य विशेषताओं में से एक है। ये हमारे लिए यहाँ आकर इन विभिन्न देशों और स्थानों को देखने का एक अच्छा मौका था, ताकि हम इस स्थान से प्रदर्शित कर सकें। ये वही जगह है जहां सलाहुद्दीन अल अय्यूबी आए, वह आए इस बिल्डिंग के शीर्ष पर, और यहां कई बार खड़े होकर सोचते और योजना बनाते हुए समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे, और उसने किया। हम भी ऐसा कर सकते हैं, खुद को बदलें, और फिर भगवान हमारी स्थिति को बदल देंगे। ये एक अच्छा सबक है ना? और मुझे उम्मीद है कि बोलने वाला उसे सुनने वालों से बेहतर समझने में सक।
आ, 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 आ,
लोग मुझसे पूछते हैं, आपने इस्लाम क्यों अपनाया, मुझे इस्लाम क्यों अपनाना चाहिए, इस्लाम अपनाने के क्या फायदे हैं, इस्लाम क्या है, ये इतना महान क्यों है, दुनिया भर में इतने सारे लोग मुस्लिम बलों में क्यों शामिल हो रहे हैं, मैं कैसे जान सकता हूं कि मुस्लिम बनने के क्या फायदे हैं। और हम जानते हैं कि हर महीने दुनिया भर में हजारों लोग शहादा दे रहे हैं, इस्लाम में प्रवेश कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं गवाही देता हूं कि केवल एक ही ईश्वर है जिसे पूजा करना चाहिए, और मैं सभी नबियों की नबूवत की गवाही देता हूं जो आदम से लेकर मोहम्मद तक हुई है, उन पर शांति हो। तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें इससे क्या मिल रहा है, इसका क्या लाभ है? एक बड़ा लाभ है, वह है एक व्यक्ति को जो आंतरिक शांति मिलती है यह समझकर कि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको पहले क्यों बनाया गया था और इसका प्रमाण क्या है, यह हमें अगले लाभ पर ले जाता है। सबूत मौजूद है, आपको अब और सवाल नहीं करना है, आपके पास कुरान और मोहम्मद की सुन्नत है, उन पर शांति और आशीर्वाद हो, क्योंकि कुरान को सर्वशक्तिमान भगवान ने हर रूप में संरक्षित किया है, जो उस समय कहा गया वह आज भी कहा जाता है, अरबी भाषा में इन दिनों भी कहा और समझा जाता है। सभी मुसलमान सहमत होंगे कि केवल एक पाठ है, एक ही पाठ जो आज सर्वशक्तिमान भगवान से मौजूद है, और वह कुरान है। यह पिछले पाठों का उल्लेख करता है और कहता है कि हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। वही पाठ, वही कुरान जिसे 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, 1.5 अरब लोग आज ग्रह पर पढ़ते हुए वही किताब हिस्सों में, लेकिन फिर भी 20 मिलियन से अधिक लोग हैं जिन्होंने पूरा कुरान याद किया है, और यह हमें एक बहुत, यह जानकर एक अच्छा एहसास होता है कि यह मौजूद है, हमारे पास इसका प्रमाण है, यह यहाँ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई अस्पष्टता नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुरान आज भी पढ़ने और लिखने के रूप में मौजूद है, जैसे कि यह मोहम्मद के समय में था, उन पर शांति हो। लेकिन और भी आज की स्थिति है, स्पष्ट प्रमाण और सबूत हैं उन शब्दों और शिक्षाओं के और आदतें और पैगंबर मोहम्मद के उदाहरण, ताकि हम जान सकें कि शादी के मामले में क्या होता है और इसे कैसे संभालते हैं, अगर तलाक होता है तो क्या होता है, अगर कोई व्यवसाय में निवेश करना चाहता है वहां कौन सी आदतें हैं, और मैं व्यवसाय में अन्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार करूं, ये सभी बातें इस्लाम में शामिल हैं, ताकि आप जो करते हैं लेकिन आप इसे भगवान के लिए करते हैं। हमारे दिल में शांति देने वाली कई चीजें हैं, दूसरों के साथ हमारा रिश्ता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस्लाम में यह भी सिद्ध होता है कि जब आप सच्चे दिल से इस्लाम का पालन करते हैं तो आपका अपने आप से रिश्ता सुधरता है, आपके माँ बाप के साथ संबंध भी सुधरते हैं, आपका अपने जीवन साथी, बच्चों और पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर होता है, क्योंकि आपको ऐसा करने का आदेश दिया गया है, कुरान में यह आदेश है, आपको पैगंबर मोहम्मद, जिन पर शांति हो, से सबसे अच्छे आचार का पालन करने का आदेश मिला है, और झूठ, गपशप और शरारतें फैलाने से मना किया गया है। इस्लाम में ये सब बातें मना है, संदेह करना भी मना है, यहां तक कि संदेह करना भी मना है। अब इस पर सोचें, ये कई शिक्षाओं में से एक है, और लोग कहते हैं अगर आप अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ मत कहें, क्या आपने यह सुना है, पैगंबर मोहम्मद, जिन पर शांति हो, ने यह विचार 400 साल पहले दिया था, उन्होंने कहा, मन काना युमिनु बिल्लाही वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, जो कोई अल्लाह और अंतिम दिन पर विश्वास करता है उसे अच्छा कहना चाहिए या चुप रहना चाहिए, चुप रहो, चुप रहो। इन शिक्षाओं की कल्पना करो और सोचो कि जब मैं इन चीजों का पालन करता हूं, जब मैं इन चीजों को व्यवहार में लाता हूं, यह मेरी जिंदगी बदल देगा, और इससे लोगों का मेरे प्रति नजरिया और मेरे साथ व्यवहार बदल जाएगा। और इसके बारे में क्या, क्योंकि इस्लाम में हमें यह सिखाया गया है कि आपके भाई के चेहरे पर मुस्कान एक दान है, हाँ, यहां तक कि आपके भाई के चेहरे पर मुस्कान भी एक दान का कार्य है। और इसे सोचो मुस्कुराते हुए, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, अगली बार जब आप एक भीड़ में हो जो मुंह चिढ़ा रही हो, मुस्कुराते हुए जाएं, नमस्ते, आप कैसे हैं, आपको कुछ भी नहीं कहना है, बस मुस्कुराएं और देखें कि लोग क्या करते हैं। आप देखेंगे कि यह लोगों की नजरिया को बदलते देता है और यह इस्लाम का हिस्सा है। तो ये बातें आपके मन को खोल रहा है ताकि आप देख सकें और जांच सकें और कह सकें, आप जानते हैं मैं बस खुद होने में बहुत लाभ पा रहा हूं और फिर संबंध है। वाह, संबंध, महान संबंध। क्योंकि इस्लाम में जैसे ही आपने अपने विश्वास की घोषणा की, आपने अपने दिल में जो था उसे कहा, यह कि कोई भी पूजा के योग्य नहीं है, उसका कोई साझेदार नहीं है, वह मोहम्मद है, अंतिम और अंतिम संदेश वाहक और सर्वशक्तिमान भगवान का सेवक। जब आप इसे कहते हैं तो आप इसे दुनिया में लाते हैं, उसी क्षण आप खुल रहे हैं और फिर आप पाते हैं कि कुरान में पहली चीज को खुलना कहा जाता है, अल फातिहा, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक संबंध है। अब आपने अपने अंदर कुछ संबंध बनाए हैं, आप अपने भगवान के साथ संबंध बनाते हैं, इसे सलाह कहा जाता है। सलाह आपका संबंध है जो आपके भगवान के साथ है। आप इसे दिन में 5 बार कर सकते हैं, लेकिन आप एक मुसलमान के रूप में इसे जल्द से जल्द करना अनिवार्य है, दिन में 5 बार इस सुंदर संबंध को बनाते हुए, ताकि आप अपने भगवान से कह सकें, हे अल्लाह, मुझे ऐसा लगता है और मुझे चाहिए और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन आप इसे उनकी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, ये कितना सुंदर है। और कुरान का क्या लाभ है जब आप इसे पढ़ते हैं और अरबी सीखते हैं और इसका पाठ करते हैं, ओह ये कितना बड़ा लाभ है। आप कुछ चीजों पर काबू पाने में सक्षम होते हैं जो आपने सोचा था कि मैं इन आदतों को नहीं तोड़ सकता, शायद सिगरेट, शराब या कुछ और बुरी आदतें, लेकिन अचानक आप उन आदतों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास दुनिया के रब, रब्बिल आलमीन आपके साथ हैं, और ये एक बड़ा लाभ है। कुछ भयानक चीजों से दूर जाने का ये एक बड़ा लाभ है। फिर हम इस्लाम की भाईचारे के लाभ को नहीं भूल सकते जो उम्मा का हिस्सा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मा, ये भाईचारा, ये एक अद्भुत चीज है, क्योंकि हम सभी को दूसरों की जरूरत है जो हमें सही चीजों को मजबूत करें और हमें बुरी चीजों से दूर रखना चाहिए। यही मुसलमानों का काम है। जब हम मस्जिद में जाते हैं, जब हम रमजान के महीने में एकत्र होते हैं, जब हम अपने भोजन और प्रार्थनाओं को साझा करते हैं, और ये सभी चीजें हमें मजबूत बनाती हैं अच्छे चरित्र के रूप में। ये सब फायदे हैं और भी बहुत हैं। आप हमें लिखकर अपने लाभ बता सकते हैं। जब आप इस्लाम में आएंगे तो आप कुछ लाभ पाएंगे। आप कहेंगे आपने हमें यह नहीं बताया, ये एक और अच्छी बात है, कृपया बताएं। हमारी साइट पर आएं, islamreligion.com पर जाएं, हमें बताएं कि आपने क्या देखा, अपने लाभों पर चर्चा करें और हम सभी मिलकर अधिकतम लाभ साझा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा लाभ तो वह है जब आप जजमेंट डे पर सीधे स्वर्ग में जा सकेंगे। यह सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि यह एक अंतहीन जीवन है। यह वह जगह है जहां आपको आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यही वह स्थान है जहां सच्चाई प्रकट होगी। ये सभी फायदे अब आपके लिए तैयार हैं। शहादा कहें, नमाज शुरू करें और उस व्यक्ति में बदलें जो आप बनना चाहते हैं, एक अच्छा, ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति अपने भगवान के सामने। यही है इस्लाम।
Around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes.
eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way.